नमस्कार।
हाँ, क्रिस्टिन हेना का 2024 में आया उपन्यास द विमेन।
क्रिस्टिन हेना को जाना ही इसलिए जाता है कि वो इतिहास के उन हिस्सों को सामने लाती हैं जिन्हें अक्सर भुला दिया जाता है,
और खास तौर पर महिलाओं की कहानियों को, जैसे द नाइटिंगेल में हमने देखा था।
बिल्कुल, और द विमेन भी एक ऐसी ही कहानी है।
ये कहानी है उन लगभग 11,000 अमेरिकी नर्सों की जिन्होंने वियतनाम युद्ध में सेवा दी थी, मतलब जिनके बारे में बहुत कम बात होती है।
सही कहा, हम सैनिकों की कहानियां तो सुनते हैं, पर उनके पीछे जो मेडिकल कोर था, जो नर्सें थीं, वो जैसे अदृश्य ही रहीं।
हाँ, और आज हम उन्हीं में से एक, फ्रांसिस फ्रैंकी मैकग्राथ की कहानी को जरा गहराई से समझेंगे।
उसकी यात्रा युद्ध के मैदान से लेकर घर वापसी तक, और घर पर जो उसकी लड़ाई थी वो शायद कहीं ज्यादा मुश्किल थी,
अपनी पहचान की लड़ाई। तो चलें शुरू करते हैं।
हाँ बिल्कुल, तो कहानी हमें कहाँ ले जाती है?
कहानी हमें ले जाती है 1965 के कैलिफोर्निया, कोरोनाडो द्वीप नाम की एक बहुत ही, कह सकते हैं, खूबसूरत सुरक्षित जगह।
और यहीं हमारी मुलाकात होती है फ्रैंकी से।
हाँ, फ्रांसिस फ्रैंकी मैकग्राथ 20 साल की एक नर्सिंग की छात्रा, एक बहुत ही अमीर, संस्कारी और बेहद देशभक्त परिवार में पली बड़ी है।
मतलब एक ऐसी दुनिया जहाँ लड़कियों से उम्मीद की जाती है कि वो पढ़ेंगी लिखेंगी और फिर एक अच्छी सी शादी करके घर बसा लेंगी।
बिल्कुल, और उसका हीरो है उसका बड़ा भाई फिनली।
अच्छा,
वो अपनी पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द देखती है।
तो फिर इस आदर्श सी दिखने वाली दुनिया में भूचाल कैसे आता है? वो युद्ध तक पहुंचती कैसे है?
भूचाल तब आता है जब फिनली को वियतनाम भेज दिया जाता है और वहां वो शहीद हो जाता है।
ओह,
फ्रैंकी के लिए ये एक ऐसा झटका था जिसने उसकी पूरी दुनिया ही हिला दी।
और इसी दुख के बीच कुछ ऐसा होता है जो उसकी जिंदगी का रास्ता ही बदल देता है।
हाँ, एक शाम उनके घर पर डिनर था और एक मेहमान ने बस यूं ही एक बात कह दी।
क्या?
कहा, महिलाएं भी हीरो हो सकती हैं।
वाओ, मतलब
सिर्फ एक वाक्य।
एक वाक्य, लेकिन उस दौर के लिहाज से सोचें तो ये कितनी बड़ी बात रही होगी।
ये तो समाज के बनाए हर नियम को चुनौती देने जैसा था।
बिल्कुल, और उस एक वाक्य ने फ्रैंकी के अंदर की चिंगारी को जैसे हवा दे दी।
उसे लगा कि यही रास्ता है।
हाँ, अपने भाई को श्रद्धांजलि देने का और शायद अपनी खुद की पहचान बनाने का भी।
तो उसने आर्मी नर्स कोर में शामिल होने का फैसला कर लिया।
हाँ, अपने माता पिता के जबरदस्त विरोध के बावजूद।
उनके लिए तो ये सोचना भी नामुमकिन था।
ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, है ना? ये एक तरह का विद्रोह था।
अपनी जिंदगी को अपने हाथों में लेने की एक जिद थी।
और फिर वो वियतनाम पहुंचती है, आंखों में देशभक्ति का सपना लिए हुए, लेकिन वहां की हकीकत वो कैसी थी?
हकीकत सपनों से बिल्कुल अलग थी, बहुत क्रूर थी। वो एक मैशो स्टाइल अस्पताल बेकोर्स होती है, मतलब मोबाइल आर्मी सर्जिकल हॉस्पिटल, जो जंग के मैदान के बहुत करीब होता है,
जहां हर पल बस मौत और तबाही का मंजर होता होगा।
आप सोचिए, चिपचिपाती गर्मी, कानों को फाड़ देने वाला हेलीकॉप्टरों का शोर, और बुरी तरह जख्मी मरते हुए जवानों की एक न खत्मने वाली लाइन।
उसका जो आदर्शवाद था वो तो पहले ही दिन टूट गया होगा
पूरी तरह से।
ऐसे माहौल में कोई अकेला कैसे रह सकता है? मतलब एक 21 साल की लड़की जिसने ये सब कभी देखा ही ना हो।
वो अकेली नहीं थी, उसे वहां एक नया परिवार मिला।
अच्छा,
दो और नर्सें थी, एथिल फ्लिंट और बाब जॉनसन।
ये उसकी दोस्त बन जाती हैं।
दोस्त भी और परिवार भी। एथिल थोड़ी अनुभवी और सख्त थी, जो उसे सिखाती है कि कैसे भावनाओं पर काबू रखकर काम करना है, और बार्ब बहुत शांत दयालु।
तो ये तीनों एक दूसरे का सहारा बनती हैं।
हाँ, एक ऐसा सहारा जो खून के रिश्तों से भी ज्यादा मजबूत था।
और इसी अराजकता के बीच उसे प्यार भी मिलता है।
हाँ, एक हेलीकॉप्टर पायलट राई वॉश, वो कुछ पल उसे उस नरक से बाहर निकालकर एक सामान्य जिंदगी का एहसास देते हैं।
आपने हेलीकॉप्टर के शोर का जिक्र किया था, उपन्यास में इस आवाज का एक बहुत गहरा मतलब है ना?
हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। वियतनाम में जब भी वो वुम्प 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 की आवाज सुनती थी
तो उसका मतलब होता था कि और जख्मी आ रहे हैं।
हाँ, काम बढ़ गया है, लेकिन एक उम्मीद भी होती थी कि शायद किसी की जान बच जाएगी।
लेकिन जब वो अमेरिका लौटती है
तो यही आवाज उसके लिए एक भयानक ट्रिगर बन जाती है, उसके PTSD का। ये आवाज सुनते ही वो वापस उसी जंग के मैदान में पहुंच जाती थी।
और यहीं से शायद कहानी का सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू होता है, घर वापसी।
हाँ, घर लौटना आमतौर पर एक खुशी की बात होती है,
पर फ्रैंकी के लिए नहीं।
उसके लिए ये जंग से भी बदतर साबित हुआ, क्योंकि जब वो लौटी तो अमेरिका वो अमेरिका नहीं था जिसे वो छोड़कर गई थी।
देश में युद्ध विरोधी प्रदर्शन हो रहे थे।
हाँ, और सैनिकों को हीरो नहीं बल्कि विलन की तरह देखा जा रहा था। उसे एयरपोर्ट पर नफरत का सामना करना पड़ा।
और उसके अपने परिवार का क्या रवैया था?
वो तो उसके दर्द को समझने ही नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि वो सब कुछ भूल जाए,
जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
हाँ, शादी कर ले, आगे बढ़े।
पर सबसे क्रूर बात तो वो थी जो उसे बार बार सुनने को मिलती थी, वो एक लाइन जो इस उपन्यास का मूल मंत्र है।
There were no women in Vietnam.
वियतनाम में कोई महिला नहीं थी।
सोचिए, ये सुनना, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये आपके अस्तित्व को, आपके बलिदान को, आपकी पूरी पहचान को मिटा देने जैसा है।
आपको एक जीती जागती लाश बना देना, एक भूत।
बिल्कुल, आप अपने जख्मों से कैसे लड़ेंगे जब दुनिया मानती नहीं कि आपको जख्म लगे हैं।
इस स्थिति में फ्रैंकी ने क्या किया? वो तो पूरी तरह टूट गई होगी।
वो टूट गई और उसने एक बहुत ही हताशा भरा फैसला लिया।
क्या?
वो दोबारा वियतनाम जाने के लिए साइन अप कर लेती है।
दोबारा? क्यों?
उसे लगा कि शायद वही एक जगह है जहां उसे समझा जाता है, जहां उसकी एक पहचान है।
लेकिन उसकी दूसरी पारी तो और भी दर्दनाक रही।
हाँ, और भी ज्यादा क्रूर। और इस बार युद्ध ने उससे राई वॉल्श को भी छीन लिया।
तो जब वो दूसरी बार घर लौटी तो वो पहले से भी ज्यादा
अकेली, ज्यादा टूटी हुई थी।
और फिर 1970 का दशक शुरू होता है, उसकी जिंदगी का सबसे अंधेरा दौर।
हाँ, ये वो दौर था जब वो पूरी तरह से PTSD की गिरफ्त में थी।
उस समय तो इस बीमारी को कोई जानता भी नहीं था,
कोई नाम तक नहीं था। वो बस बुरे सपनों, फ्लैशबैक और एक अनजाने डर में जीती रही।
और इस दर्द से बचने के लिए उसने शराब और ड्रग्स का सहारा लिया।
हाँ, वो एक ऐसे अंधेरे कुएं में गिरती चली गई जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा था।
और सिस्टम ने, सरकार ने उसकी कोई मदद नहीं की।
यही तो सबसे बड़ी त्रासदी है। जब वो वेटरन्स एडमिनिस्ट्रेशन के पास मदद के लिए गई तो उसे लौटा दिया गया,
ये कहकर के
कि महिलाएं वियतनाम में नहीं थीं, उनके रिकॉर्ड में वो एक सैनिक थी ही नहीं, सिस्टम पुरुषों के लिए बना था।
तो क्या इस अंधेरे में कोई उम्मीद की किरण थी, कोई था उसके साथ?
उसकी दो दोस्त एथल और बार्ब, वो उसकी जीवन रेखा थीं।
वो उसे जज नहीं करती थीं,
क्योंकि वो उसके दर्द को समझती थीं। और फिर उसकी जिंदगी में डॉक्टर जेमी कैलाहन की वापसी होती है,
वही सर्जन जो वियतनाम में था।
हाँ, जेमी भी युद्ध के अपने सदमों से जूझ रहा था और उनका ये साझा दर्द उन्हें एक दूसरे के करीब ले आया, एक छोटी सी उम्मीद जगी।
फिर बदलाव कब आया? दशकों के इस गुमनामी के बाद उसे पहचान मिलनी कैसे शुरू हुई?
बदलाव आया 1980 के दशक में,
जब Washington DC में वियतनाम वेटरन्स मेमोरियल बनाने का फैसला हुआ।
हाँ, ये सिर्फ एक स्मारक नहीं था, ये देश की तरफ से अपने उस जख्म को स्वीकार करने की कोशिश थी।
और फ्रैंकी वहाँ जाती है
अपनी दोस्तों के साथ, और वो अनुभव, वो उसकी जिंदगी बदल देता है।
कैसा था वो अनुभव?
वो उस काली ग्रेनाइट की दीवार पर हजारों शहीद सैनिकों के नाम देखती है, उन लोगों के नाम जिन्हें उसने अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा था।
सालों का दबा हुआ गम बाहर आ गया होगा।
हाँ, लेकिन इससे भी जरूरी बात यह थी कि वहाँ हजारों दूसरे वेटरन्स थे और उनके बीच पहली बार उसे लगा कि वो अकेली नहीं है,
उसे अपनेपन का एहसास हुआ।
और वहीं दशकों के इंतजार के बाद
वो दो शब्द सुनती है,
वेलकम होम,
घर में तुम्हारा स्वागत है।
पहली बार कोई उसे दिल से ये कहता है, और ये सिर्फ शब्द नहीं थे,
ये वो सम्मान था जिसके लिए वो 20 साल से लड़ रही थी।
ये इस बात की स्वीकृति थी कि हाँ, तुम वहाँ थीं, तुम्हारी सेवा मायने रखती है।
और इस पल ने उसे हिम्मत दी अपने अतीत का सामना करने की।
उपन्यास का अंत बहुत ही शक्तिशाली है ना?
हाँ, फ्रैंकी अपनी कहानी को दुनिया के सामने रखने का फैसला करती है।
बिल्कुल, कहानी का अंत होता है फ्रैंकी के एक पोडियम पर खड़े होने से।
अपनी और उन हजारों गुमनाम औरतों की कहानी सुनाने के लिए तैयार।
उसका जो निजी दर्द था वो अब एक सार्वजनिक गवाही बन जाता है, सालों की खामोशी टूट जाती है।
ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास तब तक अधूरा है जब तक हम उन आवाजों को नहीं सुनते जिन्हें जानबूझकर चुप करा दिया गया है।
और ये भी कि सच्ची वीरता केवल युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि उसके बाद देखे जाने और ठीक होने के लिए लड़े गए लंबे खामोश युद्ध में भी होती है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकात्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।